मुख्य समाचारों में लाखों ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स के लिए टैक्स में बचत लागू। क्वींसलैंड द्वारा न्यू साउथ वेल्स सीमा खोलने पर महीने के अंत पर फिर से निर्णय। और भारत में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन। लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। फेडरल बजट घोषित किए जाने के कुछ ही दिनों बाद लाखों ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स के लिए आयकर में कटौती की जाएगी। 49,000 से लेकर 90,000 डॉलर के बीच कमाने वाले लोगों के लिए प्रतिवर्ष लगभग $1,000 की बचत होगी, यानी $20 प्रति सप्ताह। ये बदलाव जुलाई से ही लागू माने जाएंगे और उन व्यवसायों को भी अनुमति होगी जो एक वर्ष में अपनी पूरी लागत को राइट ऑफ करके नए निवेश करेंगे। ट्रेजरर जॉश फ्राइडनबर्ग का कहना है कि सरकार को उम्मीद है कि टैक्स कटौती से घरेलू खर्च बढ़ेगा।
The tax office will move immediately to update the tax schedules, and the money will be flowing to the pay packets of Australians before the end of the year. These tax cuts bring forward stage two is vitally important. It's vitally important because it's going to create more economic activity.
लेकिन ग्रीन सेनेटर सारा हेंसन यंग का कहना है कि कटौती से केवल अमीरों को ही फायदा होता है।
Tax cuts today means service cuts tomorrow. What does that mean in reality? Less healthcare, less funding for education, less support and funding for aged care.
क्वींसलैंड के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जेनेट यंग का कहना है कि न्यू साउथ वेल्स के साथ राज्य की सीमा को फिर से खोलने के बारे में निर्णय महीने के अंत तक नहीं किया जाएगा। क्वींसलैंड 28 दिनों के बिना किसी सामुदायिक मामलों के बेंचमार्क का उपयोग कर रही है अधिकारियों को ये निर्धारित करने में कि क्या क्वींसलैंड किसी अन्य राज्य या क्षेत्र की सीमा फिर से खोलने के लिए सुरक्षित है। न्यू साउथ वेल्स में कोविड-19 के स्थानीय रूप से अधिकृत मामलों के उदाहरणों से इस पर सवाल उठे हैं कि क्या क्वींसलैंड 1 नवम्बर को सीमा खोलने की योजना को आगे बढ़ाएगा। लेकिन डॉक्टर यंग का कहना है कि अधिकारी स्थिति की बारीकी से निगरानी करते रहेंगे।
At the end of each month is when we assess what's been going on in the previous 28 days, and so we'll make that assessment then, because there are a whole range of issues. Most issues New South Wales are very well on top of. They're very good. So we also want to see significant testing.
इस बीच क्वींसलैंड में पिछले 28 दिनों से कोई भी नए कोविड-19 मामले की सूचना नहीं है। न्यू साउथ वेल्स में स्वास्थ्य अधिकारी राज्य भर में व्यापक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स ने आज 10 नए कोरोना वायरस संक्रमण दर्ज किए हैं, जिनमें से 5 को स्थानीय रूप से अधिग्रहित किया गया था। क्वींसलैंड प्रीमियर एनाटेशिया पैलेशे ने न्यू साउथ वेल्स को मिस्ट्री कोविड-19 केसेस के स्रोतों को खोजने की आज तक की सीमा दी है, नहीं तो योजनाबद्ध सीमा को फिर से खोलने की तारीख आगे हो जाएगी। लेकिन न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हैजर्ड ने एबीसी पर सुश्री पैलेशे के दृष्टिकोण को बहुत अधिक प्रतिबंधक बताया है।
We have exemptions arrangements in New South Wales that are worked on the right balance of care and caution, but also compassion. And I think what we're seeing up in Queensland now is a lack of compassion driven by a political agenda.
3 महीनों में पहली बार विक्टोरिया के सक्रिय कोरोना वायरस केस लोड 200 से नीचे हुए हैं। राज्य में कोविड-19 के 11 नए मामले दर्ज हुए हैं और कोई भी नई मौत नहीं हुई है। मेलबर्न में 14 दिवसीय रोलिंग केस औसत अब 9.4 पर है। कल बृहस्पतिवार के 9.7 से थोड़ी गिरावट है। मेलबर्न में 19 अक्टूबर से प्रतिबंधों में ढील देने के तीसरे चरण के लिए आवश्यक है कि वहां 14 दिवसीय औसत 5 या कम तथा 5 से कम मिस्ट्री केसेस हों। Premier Daniel Andrews कहते हैं कि परिणाम उत्साहजनक है।
This is an opportunity, a really important opportunity to congratulate Victorians right across the state for following the rules, sticking to this strategy. These are the results that come from a really determined effort to defeat this second wave, to see this virus off, and then to lock in that COVID normal.
सोमवार 12 अक्टूबर से विक्टोरियन लोगों को सार्वजनिक रूप से फिटेड मास्क पहनना आवश्यक होगा। लेबर नेता एंथनी एल्बनीसी ने कल रात मॉरिसन सरकार के बजट के बारे में अपनी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी। लेबर सरकार के तहत ऑस्ट्रेलिया की चाइल्ड केयर सब्सिडी पर वर्तमान कैप को हटा दिया जाएगा और एक सार्वभौमिक 90% सब्सिडी शुरू की जाएगी। श्री एल्बनीसी का कहना है कि वर्तमान योजना के तहत चाइल्ड केयर की उच्च लागत के कारण महिलाएं फुल टाइम वर्क पर नहीं आ पाती। लेबर की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्पोक वुमेन अमेंडा रिश्वर्थ का कहना है कि आर्थिक विकास के लिए सब्सिडी का विस्तार महत्वपूर्ण है।
But it unleashes our female workforce participation. It ensures that the second income earner doesn't have to turn down hours or turn down days of work because it just costs them too much. This is incredibly good for families, but it's also incredibly good for the economy.
अमेरिका के मिशिगन राज्य के डेमोक्रेटिक गवर्नर के अपहरण की साजिश रचने के कारण दक्षिणपंथी मिलिशिया सदस्यों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिशिगन अटॉर्नी जनरल दाना नेसल का कहना है कि गवर्नर ग्रेचन विटमर का अपहरण करने की साजिश एक गंभीर और पुख्ता खतरा थी। सुश्री विटमर द्वारा सख्त कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर इस साल यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर बार बार अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। सशस्त्र दक्षिणपंथी समूहों ने लॉकडाउन को हटाने की मांग पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। सुश्री विटमर ने श्री ट्रंप के दक्षिणपंथी समूह प्राउड बॉयज के प्रति संदेश की आलोचना की।
Hate groups heard the president's words not as a rebuke, but as a rallying cry, as a call to action. When our leaders speak, their words matter. They carry weight. When our leaders meet with, encourage, or fraternize with domestic terrorists, they legitimize their actions.
भारत में लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल अस्पताल में निधन हो गया है। रामविलास पासवान पिछले करीब एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे। एम्स में 2 अक्टूबर की रात को उनकी हार्ट सर्जरी की गई थी। वो 74 वर्ष के थे। पासवान एनडीए सरकार में उपभोक्ता मामलों और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बीते 2 दशकों में पासवान केंद्र की हर सरकार में मंत्री रहे। 5 दशकों में रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे। रामविलास पासवान विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद अगले कई सालों तक विभिन्न सरकारों में पासवान ने रेल से लेकर दूरसंचार और कोयला मंत्रालय तक की जिम्मेदारियां संभाली। श्री पासवान भाजपा, कांग्रेस, राजद और जेडीयू के साथ कई गठबंधनों में साथी रहे। 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान की गिनती बिहारी नहीं बल्कि देश के कदावर नेताओं में की जाती है और उन्हें एक असाधारण सांसद और मंत्री कहा जाता है जिन्होंने नीतिगत क्षेत्र में अहम योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी रामविलास के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पासवान के निधन पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 52.51 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में टेनिस में फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में जीत के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन की फाइनलिस्ट सोफिया कैनन ने अपने दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सोफिया ने चेकोस्लोवाकिया की पेद्रा काविटोवा को 6-4, 7-5 से हराया। सुश्री कैनन का कहना है कि वो फाइनल में पोलिश खिलाड़ी ईगा श्वियातेक के साथ खेलने के लिए उत्साहित हैं।
I mean, I have to figure out what she does. She's had a great 2 weeks here. She's had some great results playing some really good tennis. So I know that I'm also playing well. So yeah, I'm just gonna, you know, enjoy myself today and then tomorrow I'm gonna prepare for Saturday.
और अब बात मौसम की। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। मेलबर्न में सुबह के समय धूप रहेगी, एक दो बौछारें भी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। कैनबरा में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। सिडनी में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। ब्रिस्बेन में भी धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।